जनरल राहील शरीफ इस्लामी फौजी इतिहाद के सरबराह बनेंगे, मगर क्या तमाम पहलुओं का जायजा ले लिया गया है? तहरीक इंसाफ ने फैसले की मुखालफत कर दी, मामला पार्लियामेंट में उठाएंगे। इस्लामी फौजी इतिहाद पर ईरान के तहफजात दूर क्यों नहीं किए गए? क्या इस्लामी फौजी इतिहाद की सरबराही पाकिस्तान के लिए कांटों का ताज साबित हो सकती है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली मोहसिन शाहनवाज रांझा से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी से, दिफाई तजियाकार जनरल अमजद शेब से और जनरल सेक्रेटरी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अलामा राजा नासिर अब्बास से।
सर एक नजर अगर हम डालें सऊदी अरब के साथ जो हमारा इतिहाद रह चुका है, पाकिस्तान ने 1967 में सऊदी अरब से फौज का मुआहदा किया था। पाकिस्तान सऊदी अरब की बड़ी बहरी फौज और फिजाइया को तरबियत फराहम करता है। 1970 से 1980 के दौरान 15,000 पाक फौज के जवान सऊदी अरब में तैनात रहे। 1980 में ईरान इराक जंग के दौरान पाक फौज के दस्ते सऊदी अरब की सरहदों पर तैनात रहे। 1990 में इराक की कुवैत पर कब्जे के दौरान पाक फौज के दस्ते सऊदी अरब की हिफाजत करते रहे। दिस इज आवर हिस्ट्री दैट वी शेयर। ये आज की जो डेवलपमेंट है उसमें क्या ये पॉसिबल है कि हम समझे जनरल राहील शरीफ ईरान और सऊदी अरब को खरीद लिया है?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जिस बुनियाद पर ये 34 या 39 मुल्कों का अलायंस बनाया गया है कि ये दाइश से लड़ने के लिए, जिन मुल्कों ने दाइश को शिकस्त दी है या उससे लड़ रहे हैं, वो सीरिया है, वो इराक है या उनके अलाई हैं, वो इसका हिस्सा ही नहीं है। ये मारूफ है, अगर आप आज भी पढ़ें तो ये एक अमेरिकन लेड अलायंस है। पहले हम अमेरिकन लेड अलायंस में अफगानिस्तान में लड़े और वहां रहे, और आज हम अमेरिकन लेड अलायंस का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे उसकी हम आज तक भुगत रहे हैं उसके सारे के सारे जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, और हमारा मुल्क बर्बाद हो गया। इस वक्त राहील शरीफ जैसी शख्सियत जो एक मुल्क के हीरो थे, जो आइंदा मुमकिन है 2 साल बाद इस मुल्क के अंदर उनसे बहुत फायदा उठाया जा सकता था, एक मुतनाजा अलायंस में जाकर अपने उस मकाम को खो रहे हैं। और पाकिस्तान के अवाम में बहुत ज्यादा बेचैनी है। सऊदी अरब ने इस वक्त यमन पर हमला किया हुआ है, आप जाके देखें, उठा के देखें कि कितना जुल्म वहां हो रहा है, कितने लोग मर गए। परसों 26 मार्च को 2 साल पूरे हुए हैं वहां पर हमले के, वहां पर क्लस्टर बम मारे जा रहे हैं, ममनू असला इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, उनका समुद्री फजाई दरियाई मुआसरा है, और हम जाके उनके साथ खड़े हो रहे हैं। ये दुरुस्त नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि हमें अपने आप को बचाना चाहिए। नहीं, ये एक मुल्क जिसने एक पर हमला किया हुआ है, तो पाकिस्तान लड़ाई में जाके खड़ा हो जाता उसके साथ। पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत उसको कबूल नहीं करती। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जाना चाहिए, वहां पर अकल जमी मौजूद है, वहां देखें अगर मुतनाजे फैसले हों तो बेहतर जगह वही है कि वहां जाएं। अगर कौम में तनाजा पैदा हो जाता है, पार्लियामेंट हल करे।
साहब एक तरफ अभी आपने कहा कि जनरल राहील शरीफ की शख्सियत को और उनको हमने देखा है काम करते हुए, यही बात नासिर जंजुआ साहब कह रहे हैं कि
जिस जगह जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, वहां नहीं जाना चाहिए।
जगह को बुरा तो नहीं कह सकते।
देखें दाइश का तरीकाकार क्या है, अमेरिकन दाइश बनाते हैं, जहां दाइश पहुंचती है पीछे अमेरिका आ जाता है। इस वक्त यमन में लड़ाई हो रही है, जो जो इलाका यमन की फौज ने छोड़ा है पीछे आई है, वहां पर दाइश और अलकायदा आ गई है, वहां जाएंगे हम यमन में जा रहे हैं, वहां जो कि दाइश आ गई है। इस वक्त लीबिया पर अटैक हुआ नेटो के जरिए, नेटो के जरिए सब अरब मुल्कों ने नेटो की हमायत की, कदाफी की हुकूमत गिराई, वहां दाइश आ गया, वहां दाइश की भी जा रहे हैं, पहले खुद दाइश को वहां भेजते फिर जाते हैं। मेरी गुजारिश है एक बात, देखिए इस वक्त वेस्ट एशिया के मामलात हमारे मुल्क में ब्लैकआउट है, हमारा मीडिया उनको नहीं बयान करता, प्रिंट मीडिया बयान नहीं करता, और अवाम को अंधेरे में रख के सारे फैसले हो रहे हैं। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान के अवाम आगाह हो, पाकिस्तान के सियासतदान आगाह हो, शख्सियत आगाह हो, हमें आज ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए कि हम इतना पछताएं कि फिर हमारे पास वक्त भी ना उनको ठीक करने का।
राजा साहब इसमें कोई शक ही नहीं है कि एक एक फिरके में अनरेस्ट है,
पाकिस्तान ही सोचते हैं।